दुशासन जबरदस्ती करते हुए द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए उस दुष्टों की सभा में, असत सभा में लाया गया। दुर्योधन ने अपनी जांग ठोककर कहा कि इस द्रौपदी को नग्न करके मेरी जांग पर बिठाओ। उस समय कर्ण बोला कि ये स्त्री नहीं, ये तो पांच पांच पुरुष की पत्नी, ये तो वेश्या है। उस समय द्रौपदी धृतराष्ट्र के पास गई, दादाजी आप तो देखिए, कुरुवंश के कुल वधु की इज्जत यहां पर लूटने जा रही है, आप तो कुछ कहिए। पुत्र मोह में अंधे वह धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं कह सका। पितामह भीष्म के पास गई, पितामह भीष्म आप तो मेरी लाज रखिए, आप तो मेरी रक्षा कीजिए। परंतु पितामह भीष्म ने भी कह दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, और दुशासन उनके वस्त्र को खींच रहा है। दौड़ती हुई द्रौपदी अपने पतियों के पास गई कि मेरे पांच पांच पति हैं लेकिन फिर भी यहां पर चुप हैं, आप मेरी रक्षा करें। पांचों पति कुछ नहीं कर पाए और दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी ने अंत में देखा कि धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पितामह भीष्म भी चुप हैं, पांडव भी चुप हैं, और उस भरी सभा में देखिए ऐसा गर्हित काम उस द्वापर युग में हुआ था, आज के कलयुग में भी ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। जिस सभा में द्रौपदी को निर्वस्त करने का प्रयास कर रहे थे, उस सभा में कहते हैं 40,000 कुर्सी लगी हुई थी, 40,000 लोग बैठे थे, बाकी के हजारों लोग खड़े थे, और उतने लोगों के बीच में इस स्त्री को नग्न करने का प्रयास, किसी ने सहारा नहीं दिया। अंत में अपने हाथ से अपने साड़ी को पकड़ के रखी, परंतु कहां 10,000 हाथी का बल रखने वाला और कहां अबला यह नारी, कैसे अपनी रक्षा करे। अंत में द्रौपदी को वेद व्यास जी की बात याद आई, जिस दिन द्रौपदी का विवाह हुआ था आशीर्वाद देते समय वेद व्यास ने कहा था कि द्रौपदी जीवन में यदि तुम्हारी रक्षा कोई न कर सके, सबका सहारा छूट जाए, तब कृष्ण को याद करना, वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास दुशासन, भीम जंगा ठोक रहा है, नग्न करो, क्यों देर कर रहे हो। और यहां पर द्रौपदी अपनी रक्षा कर रही, परंतु देखा कि मैं मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं, तब भरी सभा में द्रौपदी ललकारते हुए कहती है कि अरे हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों, तुम क्या जानते हो कि एक स्त्री की लाज, इज्जत और मर्यादा क्या होती है। बड़े बड़े बूढ़े लोग इस स्थान में बैठे हैं, परंतु स्त्री की लाज, लज्जा, इज्जत और मर्यादा क्या होती है तुम लोग नहीं जानते हो। पानी के बीच में रहने वाला, द्वारका में रहने वाला मेरा भाई जानता है कि एक स्त्री की मर्यादा और इज्जत क्या होती है। इतना कह के द्रौपदी अपने दोनों हाथ ऊपर करके हे कृष्ण द्वारकावासी, पाही पाही जगतपते, कृष्ण का नाम लेते ही कृष्ण द्वारका में थे, द्वारका में थे। जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण के अंग भड़कने लगे। तुरंत कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे थे, वहां से छलांग लगाकर कृष्ण आकाश के मार्ग में उड़ने लगे। गरुड़ जी ने कहा प्रभु आप मेरे पर बैठ जाओ, तुरंत पहुंचा दूंगा मन की गति से। कृष्ण ने कहा गरुड़ आज तुम्हारी गति धीमी रह जाएगी। कृष्ण ने सोचा मेरी गति भी धीमी है। महाभारत में वर्णन, कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया, आगे वस्त्र उड़ रहा है, पीछे कृष्ण और पीछे गरुड़ जी, और कृष्ण का नाम लेते ही यहाँ पर द्रौपदी की रक्षा हुई। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन उस साड़ी को खींचता रह गया, साड़ी खींचते खींचते उनके मुख से फेंड निकल गए, लेकिन फिर भी वह साड़ी समाप्त नहीं, गिर गया दुशासन। दुर्योधन जंगा ठोकते रह गया, परंतु द्रौपदी को कोई निर्वस्त्र नहीं कर सका, द्रौपदी की लाज रह गई, रक्षा हो गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। देवी कुंती को यह याद आ रहा है, प्रभु आप कितनी रक्षा करते हैं। प्रसंग महाभारत में बहुत सुंदर है, जब भगवान ने द्रौपदी की लाज रख ली, परंतु कृष्ण की कृपा जिस पर हो गई, उसको कौन हरा सकता है। कृष्ण प्रकट हुए। और भक्तों, जहां पर प्रेम होता है वहां पर रूठना मनाना होता रहता है। तुरंत द्रौपदी ने अपने भैया कृष्ण को कहा कि भैया, यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतना देर क्यों लगाया, इतना रुला कर मुझे फिर आप मेरी रक्षा की, इतना देर क्यों लगाए। तब कृष्ण तो बोलने में इतने पटु हैं, कृष्ण ने कहा, बहना मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था, परंतु तुमने कहा हे कृष्ण द्वारकावासी पाही पाही जगतपते। अब मेरे भक्तों का वचन तो मुझे रखना है, तुमने कहा हे कृष्ण द्वारका से आप आइए, तो मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से यहाँ आना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मेरे भक्त की रक्षा करने में मैं थोड़ी भी देर नहीं करता। नमे भक्ता पुनश्यति, मेरे भक्त का कभी मैं नाश नहीं होने देता। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते। कहते विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात असत सभायाम वनवास कृच्छत। पर वनवास में दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपने हमारी रक्षा की। मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र द्रोणस्य तच्चास्म हरे विरक्षित। कुरुक्षेत्र की भूमि में कहते हैं कि मृदे मृदे, वहां परीक्षित महाराज भी कहते हैं, दुरत्ये सैन्य सागरम। कहते हैं हमारी कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना विशाल थी और एक से एक योद्धा रथी अति रथी महारथी बैठे थे, और पांडवों की सेना में गिने चुने लोग थे, लेकिन फिर भी हे कृष्ण आपकी कृपा से मेरे पुत्रों की रक्षा हो गई। बहुत सत्य बात है, कृष्ण यदि पांडवों के साथ नहीं होते तो और सबकी बात छोड़ दीजिए, कर्ण अकेला पांडवों को चना की तरह चबा जाता। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, कर्ण इतना प्रतापी इतना वीर था इतना बड़ा योद्धा था कि यदि कृष्ण पांडवों की रक्षा न करते, और यह भी छोड़ दीजिए यदि कर्ण के जीवन में दुर्घटना नहीं आई होती तो चने की तरह चबा लिया होता पांडवों को। कर्ण के जीवन में बहुत दुर्घटना आई। कहते हैं सबसे पहली दुर्घटना आप गिनते रहिए, सबसे पहली दुर्घटना कर्ण धनुष विद्या सीखने के लिए परशुराम के पास गया, और परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को धनुष विद्या सिखाते थे। तो परशुराम ने पूछा तुम कौन हो, कहा मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। परशुराम ने सारी धनुष विद्या सिखाई। एक दिन की बात, कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर परशुराम जी सो रहे थे, उसी समय एक कीड़े ने कर्ण के जांग में काट लिया और उससे खून बहने लगा, परंतु कर्ण हिला नहीं। अंत में वह खून परशुराम को स्पर्श हुआ, खून का जब एहसास हुआ तब परशुराम जग गए, और जग कर कर्ण को कहा, परशुराम ने सोचा कि ब्राह्मण के पुत्र में इतनी सहन शक्ति कभी नहीं हो सकती। कर्ण को कहा सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। तब कर्ण ने कहा कि मैं सूत पुत्र हूं। तब परशुराम ने कहा कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा प्राप्त की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि समय आने पर तुम तुम्हारी सारी विद्या भूल जाओ। पहली दुर्घटना। फिर भी कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था। कहते हैं कर्ण के शरीर के ऊपर जन्म से कवच और कुंडल था, और कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास था तब तक कोई नहीं मार सकते, क्योंकि पिछले जन्म में ये सहस्त्र कवच असुर था, और नर और नारायण के द्वारा इसके 999 कवच को तोड़ा गया। जब एक कवच बचा तब ये सूर्य में जाकर विलीन हो गया, और सूर्य देव के द्वारा जब कुंती महारानी को पुत्र प्राप्त हुआ तब वही सहस्त्र कवच असुर कर्ण बनकर पैदा, और जन्म से ही कवच और कुंडल उसके पास था। शास्त्र की बहुत बड़ी लिंक है यह। जब तक कवच और कुंडल, और इंद्र कृष्ण के कहने पर इंद्र ब्राह्मण का रूप कर्ण के पास गए और कहा कि भिक्षान दे ही। कर्ण ने कहा बोलो क्या चाहिए, इंद्र ने कहा तुम्हारे ऊपर जो कवच है और कुंडल ये दोनों मुझे दे दो। कर्ण ने कहा क्या मुझे नहीं पता है कि तुम इंद्र हो? मैं जानता हूं तुम इंद्र हो और अर्जुन का पक्ष लेकर आए हो, लेकिन फिर भी तुम कर्ण के पास ब्राह्मण का वस्त्र पहनकर आए हो, ये वस्त्र की मर्यादा है। कर्ण ने कवच और कुंडल दे दिया। दानवीर का नाम जब आता है तो कर्ण का नाम शिरमोर है, पता है, लेकिन फिर भी दे दिया। ये दूसरी दुर्घटना, अब देखिए कितनी दुर्घटना। यदि कवच और कुंडल इंद्र ने नहीं लिया होता और परशुराम का श्राप नहीं मिला होता। और भी आप दुर्घटना देखिए, महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास 5 बाण थे। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने कहा मित्र तुम डरो मत, मेरे पास 5 ये 5 बाण पर 5 पांडवों का नाम लिखा है और इससे 5 पांडव मरने वाले हैं। और भगवान कृष्ण वेदा हम वे तो सब जान गए। युधिष्ठिर महाराज को कहे कि महाराज वो 5 बाण लेकर बैठा है, इसका कुछ करो। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे हम क्या करें, हम तो सारा भार आपको सौंप दिए हैं, अब हमारी रक्षा करना मारना सब आपके हाथ में है। अब सौंप दिया सब भार भगवान तुम्हारे चरणों। हे प्रभु यदि हमारी मृत्यु हो गई तो कल के पेपर में आ जाएगा कृष्ण के भक्त मरते रहते हैं, आपकी कौन भक्ति करेगा? और आप चाहते हो कि संसार में आपका नाम हो तो हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन 5 बाण। दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज ने कहा वो सब आप देखो। तो भगवान सोचने लगे, सोचते सोचते रात को 3 बजे देवी कुंती को जगाए, कहा कि माते अब आप कर्ण के शिविर में जाओ और अपना सारा सीक्रेट सारा भेद खोल दो। और भगवान ने जो जो प्लान बताया था उसी प्लान के अनुसार कुंती महारानी गई और कर्ण को जाकर कहा कि बेटा तुम सूत पुत्र नहीं हो, वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो, तुम क्षत्रिय के पुत्र हो। कर्ण तो दोनों हाथ जोड़कर कुंती के चरणों में पड़ गया, मां मुझे पता नहीं था तुम मेरी मां हो और आज पता चला है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ने तो कह के रखा था कि कर्ण जब कहेगा क्या चाहिए तो 5 बाण मांग लेना। कुंती देवी ने कहा वो जो 5 बाण रखे हैं पांडवों को मारने के लिए वो दे दो मुझे। कर्ण ने दे दिया। तीसरी दुर्घटना, 5 बाण चले गए, फिर भी कर्ण के पास एक अमोघ बाण था जिस बाण का नाम था एकग्नि, महाभारत में वर्णन है। और कर्ण ने दुर्योधन को बताया दुर्योधन ये एकग्नि बाण स्पेशल अर्जुन को मारने के लिए मैंने रखा है, इस बाण से मैं अर्जुन को मारूंगा। भगवान को पता चला है और एक बाण छुपा कर रखा है, क्या करे क्या करे। रातों रात भगवान भीम पुत्र घटोत्कच के पास गए और बहुत उपसाया और घटोत्कच ने रात्रि युद्ध किया और उस रातों रात दुर्योधन की सारी सेना का विनाश करने लगा। दुर्योधन जगकर देखा ये तो मेरी सेना मर रही है, तुरंत कर्ण के पास गया, कर्ण एक अग्नि चलाओ। कर्ण ने कहा नहीं ये तो अर्जुन को मारने के लिए है। दुर्योधन ने कहा कल युद्ध होगा तो मारेगा, ये रातों रात पूरी सेना को मार डालेगा, कल के दिन युद्ध ही नहीं होगा। यदि कल युद्ध करना चाहते हैं तो पहले इसको मारो। तो दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने वह एक अग्नि नाम का बाण घटोत्कच के ऊपर चला दिया और उसे मार दिया। चौथी दुर्घटना, कहते हैं कर्ण के जीवन में 4-4 दुर्घटना। यदि यह 4 दुर्घटना कर्ण के जीवन में नहीं हुई होती, एक कवि कहते हैं पांडवों को चना की तरह चबा दिया होता। अकेला कर्ण काफी था, लेकिन फिर भी वह इतना स्फूर्ति से युद्ध किया, महाभारत में वर्णन है। एक दिन के बाद कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने, धमाधार युद्ध, अर्जुन के ऊपर बाण चलाने लगा और कर्ण ने एक अमोघ बाण अपनी प्रतंचा को कान तक खींचकर अर्जुन के गले का निशाना लेकर मारा भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह बाण अर्जुन के मस्तक को लेकर उड़ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत स्फूर्ति से अपने चारों घोड़ों के ऊपर मुट्ठी मारते ही चारों घोड़े घुटना टेक दिए। घुटनों के बल पर वह रथ 1.5 फुट नीचे हो गया और कर्ण का अमोघ बाण अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़ गया। देवी कुंती को यह सारी बात याद आ रही है, कृष्ण आपकी कृपा से यह सब बचे हैं, आप न होते यह कोई नहीं बचता, इसलिए हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करें। मानो भगवान श्री कृष्ण देवी कुंती की प्रार्थना सुन रहे हैं। तो सुनते सुनते कृष्ण ने कहा कि ठीक है बुआ जी, मैंने आपकी रक्षा की और बारंबार रक्षा करते आया हूं, लेकिन अब क्या चाहिए आपको? आप स्तुति कर रही हो, अब क्या चाहिए? तब इस जगत की नारी भगवान से मांगती है, न भूतो न भविष्यति, आज तक भगवान से ऐसी वस्तु किसी ने नहीं मांगी। कृष्ण ने कहा बुआ जी आपको क्या चाहिए? तब कुंती कहती है विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे कृष्ण, यदि आपको मुझे कुछ देना ही है तो मेरे जीवन में मुझे दुख दीजिए, हम होते तो एक गाड़ी और एक बंगला दे दीजिए, 10 करोड़ रुपये दे दीजिए, 10-15 दुकान दे दीजिए। भगवान सामने लक्ष्मीपति खड़े हैं और हमको कहा जाए कि आप मांग लीजिए, हम ये सब तुच्छ वस्तु मांगते हैं। परंतु कुंती महारानी कहती है आप मुझे दुख दीजिए। क्यों? दुख से क्या होगा? कुंती ने कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, जब जब हमारे जीवन में दुख आया है तब तब आपने हमें दर्शन दिया है, आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा मेरा दर्शन करने से क्या होगा? भवतो दर्शनम यस्यात। कुंती देवी ने कहा आपका दर्शन करने से अपुनर्भवम दर्शनम, आपका दर्शन करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, आपके धाम को प्राप्त कर लेता है। आपके दर्शन से पुनर्भवम, फिर से पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, आपका दर्शन। हमें दुख दीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में जिसके पास धन है, पद है, पोस्ट है, ये लोग कभी भक्ति नहीं कर सकते। आप कहेंगे किसी करोड़पति को कथा में आकर बैठिए, समय नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, महारानी कुंती कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मदह पुमान। जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जो धनी है और जो पद पोस्ट वाला है, वे कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। उससे तो अच्छा दरिद्र लोग हैं जो आपकी भक्ति में लगे हैं। परंतु देखिए ये सत्य बात है, धनी लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान के भक्त इतने बड़े बड़े सिद्धांत को भी पलट कर रख देते हैं। ये सत्य भागवत में लिखा है धनी लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से संसार के सबसे बड़े बड़े धनी आज भक्ति में लग चुके हैं। फोर्ड कंपनी के जो मालिक है अम्बरीश फोर्ड, हेनरी फोर्ड के जो पुत्र हैं अम्बरीश फोर्ड, आज भगवान की भक्ति, रोज धोती कुर्ता पहनकर मंदिर में मंगला आरती में, हमने तो देखा है, हम तो धीरे धीरे मंगला आरती में जाते हैं, वो तो दौड़ते दौड़ते, इतनी उत्सुकता है किसको? ये फोर्ड, हेनरी फोर्ड के पुत्र अम्बरीश फोर्ड, बॉम्बे मुंबई में मफतलाल एंड मफतलाल, कितना धन है। और हमारे पुरोहित परिवार भी कम धनी नहीं है, बहुत धन दबा कर रखे हैं, परंतु धन की सार्थकता वास्तव में है, मैंने पहले कल ही कह चुका हूं, अपने धन को, धन जो है इसे दूसरे शब्द में लक्ष्मी कहा जाता है, और ये लक्ष्मी जो है, इस लक्ष्मी को हम हमारी सेवा में लगाएंगे तो ये घट जाएगी, परंतु लक्ष्मी को लक्ष्मीपति की सेवा में लगाएंगे तो ये लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तो वास्तव में पुरोहित परिवार ने लक्ष्मी को लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया है, निश्चित लक्ष्मी बढ़ेगी। सही बात। कुमारानी कुंती कहती हैं, धनी लोग आपकी भक्ति नहीं कर सकते हैं, नमो अकिंचन वृत्ताय, आप तो दुर्बल के प्राण हो, आप तो दीनानाथ हो, दीनों के नाथ। एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस दिन से मैंने भगवान का दीनानाथ दीन दयाल नाम सुन लिया है, उस दिन से सारा टेंशन समाप्त हो गया है। संसार में बहुत दुखी था, परंतु सुना है कि कृष्ण का एक नाम दीन दयाल है, उस दिन से टेंशन फ्री। क्योंकि दीन दयाल सुनी जपते तपते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाय के जाऊं कहाय, अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है। कहते हैं दीन दयाल, जब से आपका नाम सुना है तब से आपकी भक्ति में लगा हूं। संसार के लोग चाहे गाली दे या मुझ पर हंसी उड़ाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। संसार के लोग मुझे गाली भी दे या मेरी हंसी भी उड़ाए, तो उसमें मेरी हंसी नहीं, आपकी हंसी है कि मैं आपको समर्पित हो चुका हूं। तेरो ही नाम तेरो ही आसर एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हे प्रभु, अब मेरी हंसी नहीं, अब तुम्हारी हंसी है। भगवान दीनदयाल है और भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, दीनों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान बारंबार कहते हैं आपको जो चाहिए वो आप मांग लो। तब कुंती महारानी अंतिम श्लोक में भगवान से मांगती है, त्वयि मे अन्य विषयामति मधुपते असकृत अति मुद हता दद्वा गंगो वोध मुदन मति। हे कृष्ण, यदि आपको मुझे देना ही है तो जैसे गंगा की धारा, गंगा जी की धारा आपने देखा, गंगोत्री में कभी आप जाएंगे तो गंगोत्री से गंगा जी चलती है, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ती हुई फोड़ती हुई। पहाड़ क्या चीज है गंगा जी के सामने, पहाड़ को तोड़ देती हैं। जैसे गंगा जी की प्रचंड गति से, अजस अविरत गति से गंगा जी की धारा बहती है, उसी प्रकार हे कृष्ण मेरी भक्ति भी आपकी तरह गंगा जी की तरह बहती रहे, आपकी ओर जाती रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमारे जूनागढ़ के नरसिंह मेहता भी बहुत सुंदर गाते हैं, शुद्ध भक्ति वधे मारी महारानी की प्रार्थना है कि प्रभु आपको देना है तो भक्ति दीजिए। भागवत खोलकर देख लीजिए, भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं, भगवान से यदि मांगा है तो भक्ति मांगी है। और भगवान से कृष्ण की यह प्रार्थना सुनकर द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठ चुके थे, परंतु कुंती की प्रार्थना सुनकर भगवान रथ से उतर गए। कहा, बुआ जी अब मैं आपके साथ रहूंगा। भक्तों, हम भी कुंती महारानी की तरह भगवान को अपने घर पर रखना चाहते हैं। हम यदि चाहते हैं कि कृष्ण हमारे साथ रहें, तो कुंती देवी की तरह प्रतिदिन कृष्ण को स्तुति करनी चाहिए, कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए, वे अवश्य हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार कृष्ण द्वारका न जाकर हस्तिनापुर में ही रुक गए। हस्तिनापुर में रहकर कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज अभी भी शोक मग्न है। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज को शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि में जितने लोगों को मारा है उनके प्रति शोक था। भगवान ने बहुत समझाया, फिर भी युधिष्ठिर का शोक नहीं गया। तब एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा किसे मुझे पितामह भीष्म के पास लेकर जाना होगा। एक दिन सुबह भगवान कृष्ण अपने कमरे में ध्यान में बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज आए, पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। आज कुरुवंश का सूर्य बुझने जा रहा है, आज कुरुवंश का महान दीपक बुझने जा रहा है, इसलिए हम सबको पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए और अंतिम समय में हमें उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर समेत समस्त पांडव और द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास गए और संसार में कई लोगों को पता चला पितामह भीष्म की मृत्यु, वे प्राण त्यागने वाले हैं। उस समय संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेद व्यास, नारद, कहते सुखदेव गोस्वामी भी वहां पर उपस्थित हुए और पितामह भीष्म ने जब पांडवों को देखा, बहुत सुंदर बात की है कि जिस पक्ष में सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जिस पक्ष में वृकोदर अर्जुन की भीम की उपस्थिति होती है, उस पक्ष में कभी हार नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण की गति बहुत न्यारी है। वास्तव में ये कृष्ण जो है साक्षात भगवान है। बड़े बड़े योगियों के योग से भी प्रकट नहीं होते हैं, बड़े बड़े ध्यानी ध्यान करते रह जाते हैं परंतु इस कृष्ण के चरणों का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। वो कृष्ण मेरी अंतिम घड़ी में, मृत्यु के अंतिम समय में मेरे सामने आए हैं, आज मैं धन्य हो गया। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं मेरा प्राण न त्यागू तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए और आप अपना दर्शन लीजिए। पितामह भीष्म अपने अंतिम समय में बहुत सुंदर स्तुति, देखिए यह स्तुति सुनना बहुत आवश्यक है क्योंकि पितामह भीष्म का अंतिम समय है और हमारे जीवन में भी ऐसा समय आने वाला है, तो उस समय में हमें क्या बोलना चाहिए, भगवान को क्या कहना चाहिए, पितामह भीष्म से सीखना चाहिए। भागवत में सुद गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। श्री भीष्म वाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृतिमुपेयुषियद्भव प्रवाह विष्णु भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये मृत्यु के समय में मेरी शुद्ध कामना रहित बुद्धि को मैं भगवान कृष्ण के चरण में अर्पण करता हूं। जो कृष्ण हमेशा आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं, फिर भी प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि परंपरा चलाने के लिए प्रकट हुए हैं।
विकर गौरव रामबरम दधाने पपुरख तुला वृतानना विजय सखे रतिरास्तु मे नवध्या।
जिनका शरीर त्रिभुवन में सुंदर है और जो श्याम कमाल जैसा शरीर है, जिनके शरीर का रंग तमाल वृक्ष के समान है, जिनके पर सूर्य के किरणों जैसे पीतांबर फरक रहा है और जो कमल जैसे मुख के ऊपर धुंधराली लट खुल गई है, ऐसे अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी शुद्ध भक्ति है। भक्ति की कामना कर रहे हैं।
दुर्गर जो विधूम रविश्व कचलु ललित श्रम वार्यनं रितास्ये मम निशित शरे विधि प्रमान त्वचि विलसत कवचे स्तु कृष्ण आत्मा।
पितामह भीष्म बाण संया पर सोए हैं और सोए हुए उस दृश्य की याद कर रहे हैं, जिस समय पितामह भीष्म धमाधार युद्ध कर रहे थे, कृष्ण ने देखा कि पितामह भीष्म अर्जुन को मार डालेंगे। उस समय कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा न देखकर उस रथ से उतरकर हाथ में चक्र धारण किया और चक्र लेकर जब पितामह भीष्म को मारने के लिए जा रहे थे, तब अर्जुन उसका चरण पकड़ लिए थे। पितामह भीष्म कहते हैं, आज मुझे वह दृश्य याद आ रहा है।
सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथम निवेश्य ऋतवती पर से निकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रति नमास्तु।
जो अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर तुरंत अपने रथ को पांडवों की सेना से कौरवों की सेना में ले गए, जो अपने भक्त के प्रति भक्त वत्सल है, जो अपने भक्त के लिए ड्राइवर बनने के लिए नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी शुद्ध भक्ति हो।
व्यवहित पुत नाम निरीक्ष्य स्वजन वदाद विमुखस्य दो शबुद्या कुमति महरदात्म विधयाया चरण रति परमस्य तस्मेस्तु।
अर्जुन जब युद्ध से विमुख हो रहा था, तब उसी अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देने वाले, जिस भगवत गीता को समझने में बड़े बड़े लोग भी विचलित हो जाते हैं, ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में मेरी शुद्ध भक्ति।
स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकार तुम पाप्लवो रथस्य कृतरथ चरणो व्यया चलतु हरिवहन तुमिव गतो तरिया।
मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, वो रथ में से नीचे कूद पड़े, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए कभी भी अपनी ओर देखते नहीं है और अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर नीचे उतरकर जैसे सिंह सियार के ऊपर टूट पड़ता है, वैसे यह कृष्ण मेरी ऊपर टूट पड़े थे, ऐसे कृष्ण यह दृश्य सदा मेरे जीवन में उपस्थित रहे। कृष्ण 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 हरे हरे।
प्लुत जपरि प्लुत आतता किनो मे प्रसवम विससार मद्वदार्थम सभवतु मे भगवान् गति मुकुन्द।
उस समय अर्जुन के रोकने पर भी मुझे मारने के लिए वो दौड़ने के लिए मेरे पास आ रहे थे। मैं आता ही तीक्ष्ण तीर मारकर उसके शरीर का कवच तोड़ रहा था। वे कृष्ण मेरे बाण को स्वयं अपने शरीर पर ले रहे थे, परंतु अर्जुन को खरोच भी नहीं आने दे रहे थे। ऐसे कृष्ण सदैव मेरी रक्षा।
रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हय रश्मिनित छिये सक्षीने भगवती रति स्तुमे मुमूर्षो यर्मिह निरक्ष्य हता गता स्वरूपम।
कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति बढ़े, इसका आशीर्वाद मांग रहे हैं। पितामह भीष्म को बारंबार वह दृश्य याद आ रहा है, इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को ऑर्डर कर रहे हैं और कृष्ण अर्जुन की बात को स्वीकार करके उनकी आज्ञा का पालन करते हैं।
ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो तुमाना हितमनुकृतवा त्वन्मदन्दा प्रकृतिमगत किल यस्य गोपा।
जिनकी मधुर चाल है, जिनका मधुर स्वभाव है, जिनका मधुर स्मित है, जिनकी मधुर दृष्टि है, ऐसे मधुराति मधुर भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो।
मुनिगण अनुपवर्य संकुलेंत सदसि युधिष्ठिर राजसु ययेषाम् अर्हणमुम पेद मम दृष्टिगोचर एष आत्मा।
युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया, वो राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, लेकिन फिर भी अग्र पूजा एकमात्र कृष्ण की हुई। उस अग्र पूजा जिसकी हुई, ऐसे कृष्ण का दर्शन में निरंतर करता रहूं।
महामजम शरीम भाजम हृदि हृदि दिष्टतमात्मकल्पिताना प्रतिदृश्य शिव नैकदार्थमेकम् समधिगतोऽस्मि विदोतवे मोह।
जैसे एक ही सूर्य सभी आंखों से अनेक रूप में दिखते हैं, उसी तरह एक कृष्ण सभी लोगों के हृदय में प्रस्तुत होते हैं। यद्यपि कृष्ण एक है, परंतु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते करते पितामह भीष्म ने देखा कि उत्तरायण का पवित्र समय हो चुका है। इस पवित्र समय को देखकर पितामह भीष्म ने सोच लिया कि भगवान श्री कृष्ण सामने हैं, उत्तरायण का समय है, और उसी समय पितामह भीष्म ने अपने प्राण को वहां पर त्याग दिया। और जैसे ही पितामह भीष्म ने अपने प्राण को त्यागा है, वास्तव में पितामह भीष्म की मृत्यु नहीं, पितामह भीष्म की मृत्यु के ऊपर विजय हुई, क्योंकि भक्तों के बीच में भगवान के सामने उपस्थित रहकर उनकी मृत्यु हुई है। संसार में जय जयकार हुई, सब लोग पितामह भीष्म की जय जयकार करने लगे। पितामह भीष्म की पितामह भीष्म की। इस प्रकार पितामह भीष्म ने अपने देह को त्यागा और परम पद को प्राप्त हुए। सुखदेव सूत गोस्वामी कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राज्य सौंपकर उनका राज्याभिषेक करके कुंती महारानी की अनुमति लेकर द्वारका जाने के लिए रवाना हुए और द्वारका में सभी महर्षियों ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, बहुत समय बीत गया। तब एक दिन की बात, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारका भेजा है कृष्ण का समाचार लेने के लिए। 8 महीने तक अर्जुन वापस नहीं आए और अर्जुन जैसे ही वापस आए युधिष्ठिर महाराज को समाचार दिए कि भगवान श्री कृष्ण यह दराधाम छोड़कर अपने धाम को सिधारे हैं। यह सुनकर पांचों पांडव, द्रौपदी, यह समस्त गण हिमालय के मार्ग से भगवान के धाम को प्रस्थान किए। परंतु इसके पहले यह पांडव अभिमन्यु के पुत्र जिसका नाम परीक्षित था, इनका नाम परीक्षित इसलिए हुआ क्योंकि जन्म से ही उन्होंने जो भगवान श्री विष्णु का दर्शन किया उसका परीक्षण कर रहे थे। गर्भावस्था में पुत्रा के इस बालक ने जो देखा था भगवान के रूप को, बाहर आकर यही रूप को ढूंढ रहे थे। परत ईक्षण इति परीक्षित, परत ईक्षण दूसरों को परीक्षण करने के कारण इनका नाम परीक्षित हुआ। और इस परीक्षित का विवाह पुत्र की पुत्नी इरावती के साथ कराया और पांडव भगवान के धाम में गए। परीक्षित का विवाह इरावती के साथ, जिससे 4 पुत्र जिसमें सबसे ज्येष्ठ जन्मेजय थे। एक समय की बात, महाराज परीक्षित बहुत सुंदर राजा थे, शासन कर रहे थे और एक बार घूमते घूमते उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। दृश्य क्या था? धर्म पदे केन चरण विच्छायामु च लभ्यगाम पृच्छति सम अश्रु वदनाम विवस्यामपि मातरम। एक बैल के 3 पांव किसी ने काट दिया था, केवल एक चरण पर खड़ा था और बाजू में एक गाय, उनके आंखों से अश्रु निकल रहा था, रो रही थी। और एक पांव पर खड़ा है, 3 पांव कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वह गाय को पूछ रहा है कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख है। संसार में हमारे जीवन में थोड़ा भी दुख आता है तो हम हमारे दुख गाने लगते हैं, परंतु ये बैल गाय को पूछ रहा है क्यों दुखी है। उसी समय परीक्षित महाराज वहां पर आए, आकर देखा मेरे राज्य में ऐसा कार्य, ऐसा गर्हित कार्य किसने किया है। तुरंत बैल के पास जाकर कहे, बताओ आपके चरण किसने काटे हैं, कौन आपके चरण को काटे हैं। बैल ने जवाब नहीं दिया। परीक्षित ने कहा, इशारा कर दो, मैं उसे मार डालूंगा। बैल कुछ नहीं बोला। परीक्षित महाराज ने जब बहुत बहुत पूछा तो बैल ने इतना ही कहा कि हे राजन, मैं नहीं जानता हूं मेरे दुख का कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं मेरे दुख का कारण मेरा मन है, कुछ लोग कहते हैं मेरे दुख का कारण मेरा कर्म है, कुछ लोग कहते हैं मेरे दुख का कारण माया है, तो कुछ लोग कहते हैं सुख दुख इस संसार में है ही नहीं, केवल भ्रांति है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं मेरा दुख का कारण क्या है। तुम तो राजा हो, राजा बुद्धिमान होता है, अब आप ही निर्णय करो कि मुझे दुख देने वाला कौन है। परीक्षित ने इतना सुना तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये बैल के रूप में साक्षात धर्म है। मैं समझ गया तुम धर्म हो। और वास्तव में वो बैल के रूप में धर्म थे। और धर्म की नीति क्या है आप जानते हैं? इस संसार में किसी भी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है उसे तो पाप लगता ही है, परंतु उस गलत कार्य करने वाले का नाम यदि हमारे मुख से हम लेंगे या उसके कार्य की चर्चा भी करेंगे तो उतना ही पाप हमें भी लगता है। इस सिद्धांत को धर्म जानता है। इसलिए धर्म अपने मुख से उसका नाम नहीं निकाले। परीक्षित समझ गए तुम साक्षात धर्म हो, लेकिन परीक्षित ने ढूंढा बाजू में कौन है इसका चरण काटने वाला, तो बाजू में एक राजा का वेश धारण करके कलयुग खड़ा था। परीक्षित ने तुरंत कलयुग के कॉलर को पकड़ा, मार डालूंगा इधर ही, परंतु कलयुग शरणागत हो गया, परीक्षित के चरण में पड़ गया, प्रभु मुझे छोड़ दीजिए। परीक्षित ने कहा कि यह पृथ्वी छोड़कर यहां से चला जा। कलयुग ने कहा कहीं तो मुझे स्थान दे दीजिए, किसी जगह पर तो। परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस पृथ्वी में चार जगह पर स्थान दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, देखिए मैं शास्त्र की भागवत सामने है, भागवत की बात बोलने जा रहा हूं, और लगता है ये बात आप सब लोग पर आ रही है अभी। तो कलयुग ने कहा मुझे स्थान दीजिए, परीक्षित ने कहा मैं चार जगह पर तुम्हें स्थान दे रहा हूं। अभ्यर्थिस तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। कलयुग ने जब स्थान मांगा तब परीक्षित महाराज ने चार जगह पर स्थानम ददो स्थान दिया। कौन सी जगह पर? तो परीक्षित ने कहा सबसे पहला स्थान ध्रुतम, इस पृथ्वी पर जहां पर लोग जुआ खेलते हैं उसके सिर पर जाकर बैठ जाना। तो आप तो बुद्धिमान हो, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग जुआ खेलते हैं उसके सिर पर कलयुग बैठ जाता है, और जुआ खेलने वाले के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है, और वह व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। तो परीक्षित ने सबसे पहले कलयुग को ध्रुतम, मैं भागवत का बोल श्लोक बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बंबई से प्रभु जी आए थे अपना मंतव्य सुनाकर चले गए, अब हमारी इच्छा होगी तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। ये मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग भागवत सुनने के लिए आए हैं, भागवत में यह कहा गया है। तो पहला स्थान जुए में दिया कलयुग को, दूसरा स्थान दिया पानम, धूतम पानम स्त्रियम सुना, कहा कि जहां पर लोग नशा करेंगे उसके सिर पे जाकर बैठ जाना। इस संसार में जो लोग नशा करेंगे, नशा माने शराब का नशा, तंबाकू का नशा, खैनी का नशा, सिगरेट का नशा, बीड़ी का नशा, गांजा का नशा, चाय का नशा, कॉफी का नशा, प्याज का नशा, लहसुन का नशा, जितने भी लोग नशा करेंगे उनके सिर पे जाकर बैठ जाए। जो लोग इस प्रकार का नशा करते हैं, जिसको इतना व्यसन है, उसके सिर पर कलयुग बैठा हुआ है और उसकी मति को घुमा रहा है, उसका मन बुद्धि कभी वश में नहीं हो सकता। आप सब बुद्धिमानों में ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो इसी बात पर एक प्रवचन हो सकता है। तीसरा स्थान परीक्षित कलयुग को दे रहे हैं स्त्रीय, जहां पर अवैध स्त्री संग हो रहा हो, अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री के साथ सहवास हो रहा हो, उसके सिर पे जाकर बैठ जाना। ऐसा व्यक्ति न तो कभी सुखी हो सकता है और न तो कभी भक्ति कर सकता है। और अंत में परीक्षित को स्थान दे रहे हैं सुना, सुना का अर्थ होता है मांसाहार। जो लोग अखाद्य वस्तु खाते हैं उसके सिर पे जाकर बैठ जाना, अखाद्य वस्तु अर्थात मांस खाना, अंडे अंडे खाना, और क्षमा करना ये प्याज और लहसुन अखाद्य में ही आते हैं, तो इस प्रकार से अखाद्य वस्तु नहीं खानी चाहिए। तो ये चार जगह पर कलयुग का वास होता है, ये चार पाप यदि कोई करता है वहां पर कलयुग निश्चित होता है, वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, वह व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता, और वह कभी मनुष्य नहीं बन सकता। ये चार कार्य मनुष्य नहीं करते हैं, पशु करते हैं, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये चार कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो अपने आप को कभी मनुष्य मत समझना। एक बार प्रभुपाद जी के पास विदेश में एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन कर आया, प्रभुपाद प्रभुपाद मैंने ये चारों कार्य छोड़ दिए, अब तो मैं भक्त बन गया ना। प्रभुपाद जी ने कहा अब तुम मनुष्य बने हो, क्योंकि अब तक मनुष्य नहीं थे, ये सब खाने वाले मनुष्य नहीं माने जाते हैं, अभी मनुष्य बने हैं, माला जपने पर अब भक्त बनोगे। तो परीक्षित महाराज ने ये चार जगह पर कलयुग को स्थान दिया और कलयुग को वहां से रिहा कर दिया। तब आगे प्रश्न उठाया गया कि परीक्षित महाराज जानते थे और समर्थ थे कलयुग को मारने में, फिर भी कलयुग का स्वागत क्यों किया? तब वे कहते हैं कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण, यद्यपि कलयुग में दोष है, पाप ही पाप सब जगह पर हो रहा है, परंतु कलयुग में एक गुण है, अस्ति एको महान गुण। वह एक गुण क्या है? कहते हैं कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग में गुण क्या है? गुण ये है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे
हरे, हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग का स्वागत किया है, तो हमें इस कलयुग का बेनिफिट उठा लेना चाहिए। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से कलयुग को आश्रय दिए। एक समय की बात, परीक्षित महाराज मृगड़ा करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में गए। दोपहर तक भूखे प्यासे बहुत प्यास लगी, समीक मुनि के आश्रम में गए। समीक मुनि ध्यान में बैठे थे, परीक्षित महाराज ने देखा कि ये ध्यान का नाटक कर रहे हैं कि वास्तव में ध्यान में बैठे हैं। देखने के लिए उसके ऊपर एक मरा हुआ सर्प रखा। एक बालक ने यह दृश्य देखा और समीक मुनि का पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी था, नदी में स्नान कर रहा था। बालक ने श्रृंगी को बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प रखा है। श्रृंगी ने देखे बिना तुरंत अपने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस किसी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप रखा है उस व्यक्ति को आज से सातवें दिन के बाद तक्षक नाग डसकर मार डालेगा। और दौड़कर घर पर आकर देखा तो मरा हुआ सर्प था। समीक मुनि को बात बताई, समीक मुनि ने ध्यान में देखा तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला है। उस समय वे बहुत दुखी हुए, इतने धर्मात्मा राजा को श्राप मिला है। तुरंत परीक्षित महाराज को यह खबर पहुंचाई। परीक्षित महाराज घर पर पहुंचे थे, तुरंत पीछे पीछे एक खबर लेकर गया कि राजन आपको श्रृंगी के द्वारा श्राप मिला है, सात दिन के बाद आपकी मृत्यु है, सात दिन में आप मरने वाले हो, आपको जो करना है कर लीजिए। उस समय परीक्षित महाराज ने मरने से बचने का उपाय नहीं किया। असुर जो होते हैं मरने से बचने का उपाय करते हैं, परंतु भक्त जो होते हैं मृत्यु को सवारते हैं। परीक्षित महाराज तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज सौंपकर लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े छोड़कर सब कुछ वस्त्र को त्याग कर हरिद्वार में गंगा के तट पर जाने के लिए निकल पड़े। परीक्षित महाराज गंगा के तट पर जाने के लिए सोच रहे हैं। सूरदास जी अब आगे की कथा को अपने काव्य में बहुत सुंदर लिखे हैं। आइए सूरदास जी की भाषा में हम परीक्षित के परम पद प्राप्ति की कथा श्रवण करें।
या विधि राजा करियो विचार।
परीक्षित महाराज आए हैं
अपना
राजमहल छोड़कर वन में जाने के लिए निकले हैं, परंतु घर के सब लोग ना कह रहे हैं प्रभु आप मत जाइए। लेकिन परीक्षित किसी के सामने नहीं देखकर कहते पुत्र कलत्र ये सब लोग रो रहे हैं, पिताजी आप मत जाइए। लेकिन किसी के सामने न देखकर राजा परीक्षित निकल पड़े।
पुत्र कलत्र देखी सब रोए,
पुत्र कलत्र देखी सब रोए,
राजा तीन की चलत चले सब लोग,
राजा परीक्षित चले हैं हरिद्वार जाने के लिए।
दुखी दवाए सब नृपति वियोग,
सब लोग दुखी हैं, परीक्षित महाराज जा रहे हैं। परंतु परीक्षित किसी के सामने न देखकर गंगा नदी के तट पर पहुंच रहे हैं।
नृपति सुर सरी के तट आए,
नृपति सुर सरी के तट
आए, स्नान मृति
गंगा जी में आए। गंगा जी में स्नान करके शरीर पर मृतिका लगाकर परीक्षित महाराज खड़े हैं।
परिसंकल्प अन्न जल त्याग्यो,
परीक्षित महाराज गंगा में स्नान कर कर अपने शरीर पर गंगा की रेत लगाकर संकल्प किए हैं। क्या संकल्प किए? कि आज से अन्न खाना बंद, पीना बंद और सोना बंद, अनशन आमरण व्रत ले लिए हैं। और परीक्षित महाराज के मन में इच्छा है कि 7 दिन में ऐसा कार्य करूंगा साक्षात भगवान को प्राप्त कर लूंगा। मन में संकल्प है भगवान की प्राप्ति करनी है। और जैसे ही परीक्षित महाराज के मन में संकल्प हुआ कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तुरंत बड़े बड़े लोग परीक्षित के इस परम पद प्राप्ति को देखने के लिए वहां पर पधारने लगे।
अत्रि वशिष्ठाधिक तहं आए, नारद आदि मुनि बहुनि सिंहाए,
परीक्षित महाराज परम पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। और यह देखकर संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि परीक्षित महाराज के पास आने लगे। सबसे पहले अत्रि मुनि आए जो वायु के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मस्तक और नेत्र से प्रकट हुए हैं। तत्पश्चात वशिष्ठ जी आए जो ब्रह्मा जी के प्राण वायु से जन्म लिए हैं। च्यवन ऋषि आए, शरदवान आए, अरिष्ट नेमी आए, भृगु ऋषि आए, अंगिरा ऋषि आए, पराशर ऋषि आए, विश्वामित्र आए, उतत्य आए, इद्म प्रद्म आए, मेधातिथि आए, देवल ऋषि आए। एक के बाद एक ऋषि मुनि आ रहे हैं परीक्षित महाराज का दर्शन परम पद प्राप्ति करने के लिए। भरद्वाज ऋषि आए हैं, गौतम ऋषि आए, पिपलाद ऋषि आए, मैत्रेय ऋषि आए, सभी ऋषियों के आचार्य ऐसे औरव ऋषि आए, एक महान स्मृतिकार औरव ऋषि आए, अगस्त ऋषि, वेदव्यास, अंगिरा, पराशर, च्यवन, शरदराज, अरिष्ट नेमी, वेदव्यास, नारद, ऋषियों का ढेर लग गया। समस्त ऋषि वहां पर आए हैं और सबके मन में एक ही कामना है कि परीक्षित महाराज परम पद की प्राप्ति करे और हम सब परीक्षित महाराज के परम पद की प्राप्ति का दर्शन करें। परीक्षित महाराज सबका दर्शन कर रहे हैं और सबको आसन दे रहे हैं।
उस आसन देती नहीं दिखायो, यो
महाराज सबको आसन दे रहे हैं और सबको बिठाए हैं। परीक्षित महाराज खड़े होकर अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। धन्य भाग्य,
धन्य भाग्य तू दर्शन पाए,
खुल गए क्योंकि आप जैसे ऋषि मुनियों का दर्शन हुआ। परीक्षित महाराज ऐलान कर रहे हैं कि आज साक्षात काल भी आ जाए फिर भी मुझे कोई हर्ष नहीं। गंगा नदी के तट पर बैठा हूं, ऋषि मुनियों के बीच में खड़ा हूं, आज मुझे कोई भय नहीं है। परीक्षित महाराज सभी ऋषि मुनियों को कह रहे हैं कि आप मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, गायत्री विष्णु गाथा, परंतु कोई ऋषि मुनि कथा करने के लिए तैयार नहीं। उस समय परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को देखकर भगवान की परम कृपा हुई और जब किसी व्यक्ति के हृदय में वास्तव में जिज्ञासा होती है तब भगवान की कृपा होती है। उस समय पृथ्वी पर स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले दिव्य लक्षण वाले आत्मराम आत्मकाम मुक्त काम प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय भागवत भूषण भागवत रत्न भागवत प्रदान भागवत भास्कर वैया सकी व्यास नंदन परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी सभा में उपस्थित हुए। बोले सुखदेव गोस्वामी की, सुखदेव गोस्वामी की, सुखदेव गोस्वामी की।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हमारी सभा में सुखदेव गोस्वामी आए हैं, सब लोग नाचिए, सब लोग गाइए। सुखदेव का आगमन हुआ है।
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्णा संकीर्तन की